गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वन चारे जमुना तीर वन चारे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वन चारे जमुना तीर वन चारे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय अंशपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमत् श्रीमाइंग्रेशल अभिचरण अरविंद भक्ति विदान स्वामी जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय इस्कॉन डिप्टी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमत् श्रीमाइंग्रेशल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्री प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय ब्रज वृंदावन धाम की जय नवदीप मायापुर धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय भक्ति देवी की जय तुलसी महारानी की जय समावित भक्त वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे ओ ग्लोरिस्ट असेंबल डिवोटीज ओ ग्लोरिस्ट असेंबल डिवोटीज ओ ग्लोरिस्ट असेंबल डिवोटीज ग्लोरी टू श्री श्री गुरु एंड श्री गौरांग ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय आज हम श्रीमद् भागवतम का चौथा स्कंद अध्याय 14 और श्लोक संख्या 1 वेण नामक राजा की कहानी शुरू हो रही है। मैत्रेय उवाच भृगु आद्यः कौन सा है यही थे हाँ तो भृगु आद्यः ते मुनयः लोकानां क्षेमदर्शिनः गोपत्री अस्ति वै नृणाम् पश्यन्तः पशुशाम्यताम्। मैत्रेय उवाच भृग्वादयस्ते मुनयोः लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तर्यः सत्रीवैन्द्रणाम् पश्यन्तः पशुसाम्यताम्। मैत्रेय उवाच भृग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तर्यः सति वैन्द्रणाम् पश्यन्तः पशुसाम्यताम्। मैत्रेय उवाच भृग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तर्यः सति वैनृणाम् पश्यन्तः पशुशाम्यताम्। मैत्रेय उवाच मैत्रेय मुनि ने कहा भृग्वादयः भृगु मुनि से शुरुआत करके ते वो सभी मुनयः महान संतो लोकानां लोगों के लिए क्षेमदर्शिनः जो हमेशा दूसरों का हित चिंतक है गुप्तरी राजा असती नहीं होने के कारण वही हमेशा नृणाम सारे सदस्यों के लिए पश्यंतः यह समझ करके पशु साम्यता पशुओं की तरह अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद ऐसी भक्तिविदान स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा महामुनि मैत्रेय ने कहा हे शूरवीर विदुर जी, भृगु मुनियों के नेतृत्व में सभी संत महात्मा उपस्थित थे, वो हमेशा सामान्य जनताओं के हित के लिए सोचते रहते हैं। जब उन्होंने देखा कि राजा अंग नहीं रहे तो उसके कारण सामान्य जनताओं की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहा, उन्होंने समझा कि बिना शासक प्रजा स्वतंत्र और निरंकुश बन जाती है। श्री प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि इस श्लोक में क्षेमदर्शिना शब्द है, वो उन लोगों के लिए लागू होता है जो हमेशा सामान्य जनताओं के हित में शुभचिंतक रहते हैं। भृगु मुनि के नेतृत्व में सारे संत महात्मा हमेशा जगत के कल्याण के लिए, इन लोगों की उन्नति और खास करके आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमेशा सोच रह रहे हैं। उन्होंने आज तक सारे राजाओं, जो सारे पृथ्वी पर राजा शासक रहे, इन लोगों को सलाह सूचन करी थी और वो भी एक ही दृष्टि के लिए उन्होंने ध्यान रखा था कि सारी जनताओं का अंतिम जो प्रेय सबसे कल्याणकारी लक्ष्य है उसके लिए ही समझ दे रखी थी। ऐसे महामुनि हमेशा राजाओं के सलाहकार बने रहे हैं। जब राजा अंग नहीं रहे तो ये सारे संत महात्माओं के सुनने वाला कोई रहा नहीं, इसलिए राज्य की सारी जनता निरंकुश बनकर किसी भी शासन में मान नहीं रही थी, अपनी स्वच्छंदी आप खुद ही से ये बर्तन कर रहे हैं। जैसे कि इनकी सभ्यता पशु जैसी बनी रही, पशुओं की कोई सभ्यता नहीं रहती, तो ये प्रजा पशुवत जैसे बने रहे। जैसे भगवद गीता के चौथे अध्याय और तेरहवें श्लोक में कहा है कि मनुष्य समाज चार वर्ण और चार आश्रम में और गुण और कर्म के विभाग से बांटा जाता है। इसमें बुद्धिमान वर्ग होता है, शासक वर्ग होता है, जो पैदाइश करने वाला और सेवा करने वाला चार वर्ग बताए गए हैं। आज की जो आधुनिक लोकशासक पद्धति है इसमें ये चार वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण किया है वो उल्टा पुल्टा हो गया है। और वो लोग शूद्र लोगों को अपना शासक बना देते हैं। जीवन का अंतिम लक्ष्य न जानने के कारण ऐसे लोग ऐसे कानून बनाते रहते हैं कि जिसमें जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं रहता। इसके फलरूप कोई भी सुखी नहीं है। यहां हिंदी क्लास में अंग्रेजी क्यों रखते हो? अंग्रेजी भागवतम क्यों देते हो? हिंदी क्लास है तो हिंदी भागवतम नहीं मिलेगा क्या? अपना तो बीबीटी है, लाना चाहिए। ठीक है, हमने कोई गलत तो नहीं बोला? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैत्रेय उवाच भृग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तव्यः सति इन्द्रणां पश्यन्त पशुसाम्यताम्। श्री प्रभुपाद जी यहां क्षेमदर्शिनः पर ज्यादा भार देते हैं और लोगों की स्थिति पशुवत है उसके बारे में कुछ नहीं कहते, कहने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। कलयुग है, कलयुग में लोग पशुवत होते हैं। वैसे तो पहले 12 साल तक के बच्चों को पशुवत बताए जाते हैं कि वो आश्रित होते हैं, उन लोगों को अपनी खुद की बुद्धि चलानी नहीं पड़ती, होती है फिर भी इनको चलाने का मौका नहीं मिलता क्योंकि वो हमेशा सुरक्षित रहते हैं माता पिता के संरक्षण में, तो वो पशुवत स्थिति निर्दोष मानी जाती है। तो लेकिन उसके बाद भी जब मनुष्य सियाना बनता है तो उसकी अकल अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रिय और श्रेय दोनों में घूमती रहती है। ज्यादातर लोग प्रिय के लिए ही जी रहे हैं, श्रेय के लिए कोई नहीं जीते। इसका कारण ये है कि जब साधु समाज है वो लोगों को ठीक ढंग से न तो मार्गदर्शन दे पाते हैं न देना चाहते। दोनों वस्तु कलयुग में संभव है। यहां खिचड़ी साधु बहुत हैं जिसको ज्यादा भगवत चर्चा करने का कोई न तो मौके का फायदा उठाने की इच्छा है और तो कि नहीं ये खीर प्रसाद मिलता रहे बस वृंदावन वास सफल हो जाएगा। भंडारे ही भंडारे होते रहते हैं। लोग अपनी श्रद्धा से एक करते हैं सही पर लेकिन जहां शासक नहीं है तो वहां अराजकता ही तो होती है। जैसे कलयुग का प्रभाव आगे बढ़ता रहता है तो शासक चाहे वो कितना भी अपने आप को लायक बनाता है लेकिन कलयुग की असर उस पर ही रहती है। हम सोचते हैं कि भारत में ये जो सारा नया जो से नई गवर्नमेंट आई है लेकिन मायावादी प्रभाव से वो लोग अंतिम लक्ष्य को कहां पहुंचे इसकी तो कोई चर्चा नहीं करेगा। जो लोग के सुचिंतक है वैसे साधु जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का आंदोलन इस हेतु से ही रखा कि योग्य मार्गदर्शन नहीं है तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ योग्य मार्गदर्शक बने। सर्वप्रथम वही बताया है सात लक्ष्यों में कि जनता अपना भगवान से निजी संबंध भूल चुकी है। इन लोगों को फिर से वो संबंध तादृश करना है, याद दिलाना है और यही जीवन में भगवत धाम वापस जाने का उनको न्योता दिया जाता है। तो ये सब शासकों को बताया जाता था पहले। शासक इसीलिए होते हैं कि जनता को ये लक्ष्य पर वो बनाए रखें, यानी कि इनके लिए कानून इत्यादि होते हैं। आजकल कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि कानून इसीलिए बनते हैं कि शासक अपनी सुरक्षा बनाए रखे शासन करने के। ऐसे कानून सारी जनताओं के लिए इसके हित में थोड़े सामान्य जनता के लिए हित में नहीं है जो सत्ता पर बैठे ही रहना चाहते हैं और वास्तविक जो उत्थान करना चाहिए आध्यात्मिक उत्थान के लिए क्या करना चाहिए। ये तो कई शिक्षित वर्गों के लिए ही कोई कर रहा है। सामान्य जनता तो वैसे भी अबुद है तो इनको अपने अपने हिसाब से भी तो सिखाने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। सिर्फ एक ढंग का हम नीति नियम अपनावे तो उसमें मर्यादा में से थोड़े ही शिक्षित वर्ग को फायदा होगा लेकिन शिक्षित वर्ग को भी इनको ऐसा इसी विरासत दी जाती थी कि भविष्य में आप ही तो प्रचार करोगे, तो लेकिन प्रश्न तो वही रहेगा कि सामान्य जनता को कौन छुपाएगा। श्री प्रभुपाद जी ने ये सारी व्यवस्था ये संकीर्तन आंदोलन में की रखी कि कलयुग किसी को भी नहीं छोड़ेगा। जब सब बड़ी बड़ी सत्ताओं को भी कलयुग हिला रही, ज्यादा देर तक कोई रहता नहीं, तो हमें किस पर हमें आश्रय लेना चाहिए? साधुओं का आश्रय सबसे श्रेष्ठ है, सामान्य हित के लिए भी, श्रेय की बात नहीं, सामान्य हित के लिए भी साधु हमेशा चिंतित रहते हैं। धर्म बनाए रखने के लिए धर्म की भी तो रक्षा करनी चाहिए, लेकिन कौन से धर्म की रक्षा करनी चाहिए वो भी कलयुग में कोई जानता नहीं। भागवत धर्म की रक्षा करनी चाहिए, जबकि हम अलग अलग धर्मों की मान्यता में पड़े रहते तो वो धर्म की नींव जो बुनियाद है तो वो तो सिर्फ वैदिक धर्म में ही है, और वैदिक धर्म भागवत धर्म पर टिका है, तो हम भागवत धर्म का प्रचार श्री प्रभुपाद जी की आज्ञा से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में कर रहे हैं। अंतिम लक्ष्य जो है वो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष में पड़े रहते हैं, चाहे कितने भी धार्मिक हो, तो उसमें भी मायावादी ज्यादा है। मायावादी भी तो धार्मिक कहलाते हैं, मायावादी लोग भी धार्मिक कहलाते हैं, वो लोग भी बहुत सारी जगह सब जगह और वृंदावन में भी बहुत घूम रहे हैं, लेकिन जगत के हित के लिए कल्याण के लिए कौन काम करेगा? वहां तो त्याग सेक्रीफाइस की जो भावना है वो सिर्फ गेरुआ पहन के कौन बता सकता है। फिर भी जब कोई भी छोटी बाबत में भी मत मतांतर होता है तो बड़ा हंगामा हो जाता है, यानी कि जनता फिर से तुरंत ही अनरूली शासन से बाहर बन जाती है और अपने हाथ में कानून ले लेते हैं, अपने हाथ में कानून ले लेते हैं। तो जो अपने हाथ में कानून ले लेते हैं, जो कानून के आश्रय में इनका प्रोटेक्शन होना चाहिए लेकिन अपने हाथ में ही कानून लेते, इसका मतलब कानून इन लोगों के लिए है ही नहीं, तो खुद ही तो अपने हाथ में लेंगे। आप कहीं भी जाओ, कुछ भी होता है तो सामान्य जनता, भारत में तो बहुत प्रख्यात है कि अपने हाथ में डंडा ले लेती है, किसी ने कोई भी हरकत की तो उसकी वहीं पिटाई हो जाती है, लोग ही कर लेते। जो इसमें जिन लोगों को कुछ लागू नहीं होता है वो लोग भी अंदर शामिल होकर पिटाई करने लगते हैं, भाई क्या हुआ? यानी कि ये अराजकता इतनी फैलती है कि योग्य शासक नहीं है। हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये पाशुविवृत्ति पशुवृत्ति, पशुवृत्ति तो चार बताई गई है, आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य एतत् पशु भी नराणाम, चार चीज पशुवत बताई गई है। और ये स्वयं अपने आप को बचाने के लिए भी कोशिश करता है, लेकिन क्या बच पाता? तो जो जीवन का मूल उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना, वो कौन बचा पाएगा? तो इसलिए आवश्यक राजा ऐसा होना चाहिए जो सब कानून अपने हाथ में लेकर जनता को नियंत्रित करे। नियंत्रण इसीलिए है कि प्रगति हो। जैसे कि अपने भक्तिवर्धक जो नियम है उसमें कोई बाधा डालने वाला है तो जड़तापूर्वक नियम का पालन करना वो भी बाधा बताई गई है। आप देखो कि जो जो शासक वर्ग है वो कोई नियम से काम कर रहे हैं? नियम इसीलिए है कि प्रगति खराब, वो तो अपने खिसे की प्रगति चाहता है और कुछ नहीं, और अंतिम लक्ष्य के लिए कोई सोचता नहीं। ये कलयुग है, और कलयुग में ये प्रभाव क्यों है? क्योंकि कलयुग तामसी प्रवृत्तियों से खदबदता है। तामसी प्रवृत्ति राजा इसीलिए यदि रजोगुणी है तो उसमें शक्ति का उपयोग करने की आदत होती है। रजोगुण प्रवृत्तिशील होता है, राजा हमेशा प्रवृत्तिमय बना रहता है। वो चारे प्रकार की प्रवृत्ति, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की चारे प्रवृत्तियों में वो सबसे आगे होना चाहिए स्वयं, और उसके लिए ही वो मार्गदर्शन साधु संतों से प्राप्त करना होता है। लेकिन कलयुग में साधु संत भी कहां है? किसके हित के काम करेंगे? तो श्री प्रभुपाद यहां क्षेम दर्शन पर इतना भार देते हैं। ये सारे मुनि संत महात्मा श्रीमद् भागवत की शुरुआत में शौनक आदि मुनियों की भी बात है, तो लोग हित के लिए ही तो 1000 साल का ये जो सत्र कहलाता है उसके लिए भागवत चर्चा कर रहे हैं। इतनी लंबी भागवत चर्चा करने का कोई आयोजन है? हम तो 1 सप्ताह में थक जाते हैं। तो 1000 साल की नित्य भागवत सेवा करना कितना, पर लेकिन ये एक ही कारण के लिए एक कली घोर वो आया दाखिल हो चुका है। और इसमें कौन सा उपाय है कि जो सामान्य जनताओं के अपने मूल लक्ष्य से हम बचा पाए? कौन सा उपाय? तब भगवान का जो ये गुणगान है, कीर्तिगान है, वही एकमात्र करने से हो सकता है। क्योंकि ये पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त और अभिन्नत्वाम नाम नामिनो, ये भगवान के जो गुणगान है पूर्ण शुद्ध होते हैं और नित्य मुक्त स्वतंत्र होते हैं, तो वो दूसरों को भी स्वतंत्र यानी ये 3 गुणों से परे। हम लोग अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग 3 गुण में रहकर करते हैं। 3 गुणों से ऊपर उठने की बात के लिए ही तो ये भगवान नाम दिया जाता है। ऐसा उपाय दूसरे संत महात्मा नहीं देते हैं कि सिर्फ हमें भगवान के नाम पर ही इतना आधार रखना है। हरिदास ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में कहते हैं सिर्फ भगवान का नाम मात्र पर विश्वास, एक ही एकमात्र आवश्यक है जो अपने परम गंतव्य स्थान भगवत धाम वापस जाने के लिए सहायक बनेगा। वो भगवान नाम कभी अपना साथ नहीं छोड़ता, यानी कि भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। तो इस हालत में वो सोच रहे हैं कि कोई तो राजा होना चाहिए, और राजा हमेशा अपने कुल से चले आते हैं। इसका कारण भी बताते हैं कि ये वेण की उत्पत्ति कैसे बनी रही और क्यों कारण बनी रही। वहां लोकतंत्र उन्होंने नहीं स्थापित किया, क्योंकि प्रजा कैसे निरंकुश बन सकती है, प्रजा अपने हाथ में अपना हित कहां पड़ता है कि मुख्य हित कहां, मूल हित कहां। प्रजा को पशुवत कहां, कलयुग के प्रभाव से ये सब धर्म और उसके अनुष्ठान भी उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। सब जगह प्रदूषण, प्रदूषण यानी चेतना का प्रदूषण से शुरू करके हम अपनी सारी मनसा वाचा कर्मणा वाली सारी प्रवृत्तियां प्रदूषित होती है। ये प्रदूषण में सिर्फ अज्ञानता का कारण बताया जाता है, और कलयुग अज्ञानता का प्रतिनिधित्व करता है। अज्ञानता हमेशा नाशपंथी होती है। श्री प्रभुपाद जी ने पहले से ही अमेरिका में जाके भी यही सिद्धांत को पकड़ा रखा है कि यदि किसी का भी उत्थान करना है तो उसमें हरिनाम संकीर्तन की आवश्यकता सर्वप्रथम बनाई रखी है। ऐसे नहीं कि हम मित्र बनेंगे, हम समाज सेवा चालू कर देंगे, लेकिन हरिनाम के अलावा कोई भी ताकत किसी के हृदय परिवर्तन यानी कि हृदय का जो प्रदूषण है इनको सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता, कोई भी उपाय ऐसा नहीं। जो ताकत आध्यात्मिकता में है वो कोई भी भौतिक साधनों या समाज सुधारक प्रवृत्तियों द्वारा सिद्ध नहीं बनी है, बल्कि कलयुग जैसे आगे बढ़ता जा रहा है ये सारी प्रदूषण और आगे बढ़ता जाता है। तो समाधान कहां, समाधान तो मिलेगा ही नहीं। आप युग के साथ होड़ नहीं कर सकते, वो तो आगे बढ़ता ही जाएगा, हम पीछे के पीछे रह जाएंगे। यानी कि काल के अनुसार हमें काम नहीं करना है, काल का मूल नियामक कृष्ण भगवान स्वयं है, इनकी आज्ञा से काम करना है। सारी भौतिक प्रकृति जिसमें काल तो एक अंग है जो प्रकृति का भी संचालन करने वाला, वो भगवान का प्रतिनिधि है। प्रकृति भी भगवान की प्रतिनिधि है और काल उसके संचालक। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौनते जगत भी परिवर्तते। ये परिवर्तन यानी कि ये स्थिति हमेशा काल के चक्कर में ऐसी घूमती रहेगी कि हमारे हाथ में कोई भी उपाय नहीं रहेगा एक हरिनाम के अलावा। और प्रभुपाद जी वो हरिनाम की अवधि भी ये 10,000 साल तक ही रखते हैं। श्रीमद् भागवत में हरिनाम की महत्ता बताई है, सारे वेद में भी बताई है और वेदों में यजुर्वेद में कलिसंतन उपनिषद में हरे कृष्ण महामंत्र तो लिखा ही है, वो हरे राम से चालू होता है इतना ही है ना, पर लिखा तो है ही ना। तो अन्य कलियुग में भी भगवान नाम का तो उपाय होता था। तो हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हर एक कलयुग में भी आसानी से मिलता था। लेकिन ये मंत्र के प्रणेता चैतन्य महाप्रभु जब तक आते नहीं और सारी गैर समझ दूर नहीं करते, मायावादियों को ताड़न नहीं करते, तब तक हमें कोई लाभ नहीं होता। नहीं तो वो लोग भी गाते हैं हरे कृष्ण महामंत्र उस तरह, अब जाओ गुरुवार तो हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, मंत्र गाते ही रहते हैं, माला नहीं करते लेकिन गाते ही रहते हैं। लेकिन अड्डा है मायावादियों का। आदिशंकर भी वहां कल्लड़ी में पैदा हुए और गुरुवायुर है, 100 किलोमीटर भी नहीं है वहां से। सेवा करते हैं बहुत बढ़िया ढंग से, चतुर्भुज नारायण का स्वरूप है फिर भी द्विभुज बनाकर हर रोज कृष्ण लीला के ध्यान में रहते हैं। और श्रीमद् भागवत तो फटाके फूटते मोट में ऐसे ऐसे श्लोक बोलते ही रहते हैं वो लोग, फिर भी हम देखते हैं ये लोग काफी उल्टी पुल्टी बातें होती हैं, इनके समाज में गैर व्यवस्था इत्यादि काफी है। हम कुछ नई चीज नहीं ले जा रहे हैं प्रभुपाद जी के लिए, लेकिन प्रभुपाद जी की ये और चैतन्य महाप्रभु की जो सारी शिक्षा पद्धति है वो प्रभुपाद जी ने अपनाई है, उसका ही आग्रह करते इन लोगों का हृदय परिवर्तन होने लगता है। वो लोग हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं, वो हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे करने लगते हैं। ज्यादा वो प्रतिकार भी नहीं करते कि आप उल्टा क्यों गा रहे हैं, हम तो ऐसे ही गा रहे हैं, वेद में बताया है, लेकिन इनको कुछ लाभ नहीं हो रहा है। दूसरे कलयुग में भी तो ऐसा महामंत्र मिलता था, फिर भी जो भगवान का नाम प्रचार करने वाले भगवान ही होते तो इसमें कितनी आध्यात्मिक शक्ति भरी होती है। इसका परिचय कराने के लिए हमें चैतन्य महाप्रभु को इनके चरणानुगामी होना होता है। इनकी पद्धति क्या है, इनके पीछे क्या भावार्थ है, ये सब श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं। धार्मिकता तो है, किसी धार्मिकता का सारी दुनिया में अभाव नहीं है, 99% धार्मिक है लोग, लेकिन इनको फायदा नहीं होता। भवसागर पार कराने के लिए बहुत वो धर्मों में कोई ऐसी भावना भी नहीं, नहीं न तो कोई उपाय रहा है न कुछ नहीं। माला तो सब करते हैं, क्रिश्चियन लोग भी माला करते हैं, मुसलमान भी माला करते हैं, हा? उत्पन्न घोराम, घोर यानी कि बहुत भयानक। कलयुग का प्रभाव इतना भयानक है कि धर्म में भी घुसपैठी ऐसी कर बैठा है, धर्म में भी घुसपैठी कर रहा है। अपने इस्कॉन में भी बहुत सारा ऐसा दिखाई देगा जो प्रभुपाद जी की इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा। तो हमें इतना ध्यान देना चाहिए। कलयुग अपने ऑल्टर पे भी होगा, हमने चंडीगढ़ के ऑल्टर में तो देखा था कलयुग बैठा था, लेकिन सुधार करने का उपाय इसीलिए करते हैं। लेकिन किसी को पसंद होता है, किसी को ना पसंद होता है, लोकशाही है, क्या है क्या नहीं। लेकिन जगत के कल्याण के लिए तो कुछ हमें साहस करना पड़ेगा। और कुछ हेतु न हो, लेकिन फिर भी हमारे यहां काफी अनावश्यक नियंत्रण भी बनता रहता है, किसी का भरोसा नहीं। ज्यादा नियंत्रण करते हैं तो भी प्रगति नहीं होती, ज्यादा नियंत्रित करते हैं तो भी प्रगति नहीं होती। यानी कि हम नियमाग्रह, जड़तापूर्वक नियम बना रखते हैं तो भक्ति की प्रगति नहीं होगी, या नियम को सदंतर हम ठुकरा दें तो भी भक्ति की प्रगति नहीं होती। तो ये घोर परिस्थिति से बाहर छूटना है तो प्रभुपाद जी ने जो दिया है उतना काफी है, लेकिन शब्द शब्द उसका पालन करना चाहिए। तो इसके पीछे प्रभुपाद जी का क्षेम दर्शी न जो तात्पर्य है, क्योंकि वो थे, हम कितने हैं क्षेमदर्शी, हमें इतना लागू होता है फिर भी हम कितने हैं, लोगों के कल्याण के लिए हम कितने त्याग करते हैं। चैतन्य महाप्रभु की ये सेना में सभी सेनापति है, सभी सेनापति प्रभुपाद जी ने जो जो नियम बनाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ में, उसका अक्षरश पालन करना चाहिए। ये नियम सीधे ही पालन करना चाहिए, दूसरी ओर समझ करके हम उसे अनदेखी कर लेते हैं तो वो पालन नहीं होता। इनके शब्द बहुत पारदर्शी हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट है, उनके गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त देखो रही आएंगे, आरना करी है मने आशा। हमारी दूसरी हमारी अलग सी जो बुद्धि है वो दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं। भूख लगी होगी फोन को भी। प्रभुपाद जी चार वर्ण चार आश्रम की व्यवस्था के लिए भी इतना भार दे रहे हैं, क्योंकि वो भी शासन करने के लिए उपयुक्त रहेंगे कि लोग अपने गुण और स्वभाव से कर्म करते रहते हैं, और ये कर्म में भी एक दूसरे को इनका पोषण करते रहे। जो शूद्र लोग दूसरों की सेवा नहीं करेंगे, पहले तीन वर्ग की सेवा नहीं करेंगे, तो उनकी रक्षा, उनका मार्गदर्शन और उसका पोषण भी कौन करेगा? या सिर्फ व्यापारी लोग के प्रति ही कोई एक शासक ध्यान देता है तो इन लोगों का काफी फायदा बनाने के लिए आजकल गवर्नमेंट में तो बहुत सारे ऐसे करते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट को आयकर की भी माफी देते हैं, ये भी करते हैं। अरे इन लोगों के पास ज्यादा पैसे हैं, इनको और माफ करने की क्या आवश्यकता है? तो शोषक वर्ग कौन होता है? जिसका शोषण होता है वो तो शूद्र लोग की, इनका शोषण होगा, यहां की फिर से अराजकता बनी रहेगी। ब्राह्मणों को पूछता नहीं, ब्राह्मण लोग भी कलयुग में कौन सा व्यवसाय अपना लेते हैं? उसका तो व्यवसाय है पठन पाठन जजन जाजन दान प्रतिग्रह, यानी कि वो गुरु है, वो टीचिंग करे। तो ज्यादातर ब्राह्मण के देखे कि ओ अध्यात्म का टीचिंग तो कहीं हो नहीं रहा, चलो मटेरियल टीचिंग करो। अरे ये कोई ब्राह्मण का धंधा है? शिक्षक बनना तो वो भी अभी अभी भौतिकवादी लोग भौतिक विषयों के लिए जो शिक्षा दे रहे, तो ब्राह्मण कह के नहीं मैं टीचर हूं, लेकिन कहां अल्टीमेटली चीटर है, टीचर नहीं है। क्योंकि जो सिखाना चाहिए वो तो सिखाता नहीं और उसको सिखाने भी देते नहीं, तो पेट के लिए चीटिंग भी कर सकता है, तो टीचिंग नहीं, चीटिंग। तो न तो उसको स्वयं को फायदा होता है अपनी प्रगति का, न तो दूसरों को करा सकता है। अब ब्राह्मण लोग भी शूद्र जैसे काम करते। प्रभुपाद जी स्वयं कहते कि हम बचपन में देखा करते थे, हमारी पड़ोस में एक ब्राह्मण परिवार था, लेकिन पिता का व्यवसाय कोई बच्चा लेना नहीं चाहता था, क्योंकि ये देखो भिक्षा मांगे, अरे आज तक आप लोगों का पोषण किया, बच्चे ऐसे क्यों उल्टा सोच रहे हैं? लेकिन नहीं, वो तो स्कूल में जाएंगे लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। तो एक बच्चा मजदूरी कर रहा था, बड़ा हुआ फिर भी मजदूरी चाली रही है उसकी। तो प्रभुपाद जी के हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो वो हमारे पड़ोसी लड़के को ठेला धकेल कर देखते थे, लेकिन हम बोलते थे पंडित जी पाए लागू, पंडित जी ब्राह्मण है लेकिन ठेला ले जा रहा है, मेहनत कर रहा है। लेकिन वो ब्राह्मण वो सोचता है कि हाँ ठीक है ये तो, ले बेटा जीता रहे तू, पाए लागे तो आशीर्वाद तो देने पड़ेंगे। ब्राह्मण लोग आशीर्वाद देते हैं दूसरों का क्षेम कल्याण करने के लिए, लेकिन वो तो कह रहे कहा लेकिन कोई वास्तविकता में तालमेल नहीं है, है ब्राह्मण का बेटा लेकिन आशीर्वाद देना भूला नहीं है। लेकिन जो कर्म बंधन है उसमें वो नहीं छूट पाता, तो उसके आशीर्वाद दूसरों के कल्याण के लिए कैसे सफल होते हैं? आशीर्वाद कौन देता है? जिसके पास सब कुछ आ गया हो वो विरक्त है, वही आशीर्वाद दे सकते हैं। बहुत सारे अपने साधु महात्माओं के ये आशीर्वाद की पद्धति अलग अलग से बताई है कि वो लोग क्षेम कल्याण के लिए ही देखते हैं। प्रभुपाद जी वो एक साधु का उदाहरण देते हैं कि वो अपने शिष्यों के साथ कहीं गांव में अड्डे में तप कर रहा है, तो उसे बहुत सारे प्रभावित होकर आने लगते हैं। तो एक राजा का बेटा आया तो उसको कहे राजपुत्र चिरंजीव ऐसा आशीर्वाद दिया। कोई मुनि का बेटा आया तो उसको कहे माँ जीव मुनि पुत्र तो अभी मर जा ऐसे आशीर्वाद दिए। और तीसरा भगत आया कि साधु जीवो वा मरो वा और एक खाटकी आया उसको कहा माँ जीव माँ मर इती करे। चार अलग अलग प्रकार आशीर्वाद, लेकिन इसमें देखो क्षेम कल्याण कितना है। चार आशीर्वादों प्रभुपाद जी स्वयं बंबई में जब थे तो एक शेठ हर रोज इनके दर्शन के लिए आता था। अपने परंपरा से वो पांव छूकर आशीर्वाद लेकर चला जाता था। तो एक दिन आया तो भक्तों के बीच में प्रभुपाद जी थे तो प्रभुपाद जी उसकी मनोवृत्ति को जानते थे कि ये सिर्फ आशीर्वाद लेने आता है, कोई सुनना नहीं चाहता कुछ कल्याण के लिए। तो उसने कह दिया प्रभुपाद जी ने कहा आज मैं तुझे ऐसा आशीर्वाद देता हूं कि तेरी सारी भौतिक अवस्था नष्ट हो जाए। है? वो बेचारा घबराया, दूसरी बार आया ही नहीं। देखो प्रभुपाद जी कल्याण करने की भावना से आशीर्वाद देते हैं और लोग लेना भी नहीं चाहते, उनको अपने मन पसंद आशीर्वाद चाहिए। ये कलयुग है सब उल्टा पुल्टा होता है। गौरकिशोर दास बाबा जी ये आशीर्वाद लेने के लिए बहुत सारे आते थे, तो वो जहां लोग टट्टी पेशाब करते हैं वहां बैठ जाते हैं और अपनी साधना करते हैं कि यहां कोई नहीं आएगा। जगत के कल्याण के लिए तो वो ऐसी जगह में भी साधना करके निर्लिप्त रह सकते हैं, लेकिन साधु इतना सारा त्यागवान होता है तो त्याग की मात्रा कहां है, कौन देख सकता है। जो सर्वस्व त्याग करके सारे जगत के कल्याण के लिए है प्रभुपाद जी, बिना त्याग कोई कल्याण भी नहीं कर सकता। बिना त्याग कोई कल्याण भी नहीं कर सकता। तो कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं वृंदावन में आकर बहुत सारा कल्याण कर सकता हूं। देखो झगड़े का मामला खत्म नहीं होगा। इसमें त्याग की भावना होनी चाहिए, बिना त्याग कोई कल्याण भी नहीं कर सकता। तो कलयुग में दोनों चीज प्रगति कर रही है। कौन सी? तो पहली लोगों में त्याग की भावना नहीं है, इसलिए लोक क्षेम के लिए कोई काम नहीं करेगा। कितने ऐसे मायावादी लोक कल्याण की योजना बना रहे हैं लेकिन एक सफल नहीं हुई है। प्रश्न तो वही वही बने रहे और ऊपर से ज्यादा बढ़ गए हैं। आहार निद्रा भय और मैथुन में प्रश्न बढ़ गए हैं, समाधान नहीं हो रहा। तो ये कलयुग नाशपंथी है क्योंकि जगत के कल्याण का एक ही मात्र भगवान के नाम पर आधार है। तो भगवान के नाम द्वारा जो सारी योग क्षेम की जो भावना है, योग क्षेमम वहाम्यहम्, योग और क्षेम दोनों भगवान अपने मत्थे पर ले लेते हैं। तो भगवान के नाम में वही शक्ति है जो हमें हमेशा इनका ही आधार लेकर आगे काम करना। तो किसी को कोई प्रश्न है?